ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद बैठक द्वारा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के सी कार्तिक 25 गते से 30 गते तक होने वाले अजरबैजान भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत। सरकार 10 से 14 वर्ष की बच्चियों को लक्षित कर सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV टीकाकरण करेगी संचालित। और स्पेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण हुई कम से कम 65 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के अजरबैजान दौरे के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। कल हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि राष्ट्रपति पौडेल की इसी कार्तिक 25 गते से 30 गते तक अजरबैजान यात्रा को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रपति पौडेल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अजरबैजान के बाकू में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन संबंधी महासंधि पक्ष राष्ट्रों के 29वें सम्मेलन COP 29 में सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। इसी तरह मंत्रिपरिषद बैठक ने भूमि समस्या समाधान आयोग के अध्यक्ष पद पर प्यूठान के हरिप्रसाद रिजाल, उपाध्यक्ष पद पर जाजरकोट के सनत कुमार कार्की तथा सदस्यों में महोत्तरी के गुंज बहादुर खड़का, झापा के अनिल कृष्ण प्रसाई, डॉ सिंधुपाल चौक के जगत बहादुर बसनेत, कैलाली के टेक बहादुर शाह, दारचुला के गोवर्धन कोली और तनहू के आरती भंडारी को नियुक्त करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने नेपाल प्रहरी के जनपद समूह की ओर रिक्त AIG पद पर DIG किरण राणा और प्रावधिक समूह की ओर रिक्त AIG पद पर DIG डॉ सुंदर प्रसाद ह्यूजो की पदोन्नति करने का निर्णय किया है। इसी तरह बैठक ने कई अन्य निर्णय भी किए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल टेलीकॉम कंपनी लिमिटेड को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री देवीय आपदा राहत कोष में जमा की गई सहायता राशि के बारे में सूचित करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची नेपाल टेलीकॉम की टोली को प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र की संपत्ति है, इसलिए जनता को सेवा देने के सवाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सरकार स्कूल और स्कूल न जाने वाली किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ HPV टीकाकरण अभियान चलाने जा रही है। स्वास्थ्य सेवा विभाग के बाल स्वास्थ्य तथा टीकाकरण शाखा के प्रमुख डॉ अभियान गौतम ने बताया कि टीकाकरण अभियान कक्षा 6 से 10 तक और 10 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली बच्चियों को लक्षित कर शुरू किया गया है। उनके अनुसार उस आयु वर्ग की लगभग 16,88,000 बच्चियों को HPV के खिलाफ टीका लगाया जाएगा। डॉ गौतम ने बताया कि टीकाकरण अभियान आगामी माघ में लगभग 15 दिनों तक चलाया जाएगा और प्रत्येक पालिकाओं में माध्यमिक तह की बच्चियों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये नेपाल में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान होगा। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ अरुण शाही ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ने का मुख्य कारण ह्यूमन पेपिलोमा नामक वायरस का संक्रमण है, इसलिए इसके खिलाफ टीकाकरण किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा विभाग की बाल स्वास्थ्य तथा टीकाकरण शाखा के अनुसार नेपाल में महिलाओं में सबसे आम कैंसर में से सर्वाइकल कैंसर है और उसके बाद स्तन कैंसर है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि NTC को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने वादा किया है कि अगर सिंह दरबार वैद्यखाना विकास समिति पर्याप्त आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन करती है तो मंत्रालय बाजार प्रबंधन की जिम्मेदारी लेगा। आज समिति की वर्षगांठ, राष्ट्रीय आरोग्य दिवस तथा धन्वंतरी जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री पौडेल ने समिति को तुरंत उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया और कहा मंत्रालय दवाओं की बिक्री के लिए व्यवस्थित वातावरण बनाने के लिए तैयार है। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने पत्रकारों को सुशासन के पक्ष में कलम चलाने का अनुरोध किया है। नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा दीपावली छठ लगायत त्योहारों के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने देश में सुशासन कायम रखने तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा को पूरा करने के लिए सुशासन केन्द्रित आवाज उठाने का पत्रकारों से आग्रह किया। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड ने कुम्भेश्वर में स्थापित कम्युनिष्ट पार्टी के संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्य के शालिक में माल्यार्पण कर उनकी जन्म शताब्दी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संसदीय सुनवाई समिति ने बेल्जियम के लिए प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल का नाम अनुमोदित किया है। समिति के ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवरा की अध्यक्षता में आज हुई बैठक ने लम्साल के नाम को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। ये जानकारी समिति के सदस्य महेश बर्तोला ने दी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मनाए जाने वाले काग तिहार आज कौए को यमराज के दूत के रूप में पूजा करके और मिठाई खिलाकर मनाया गया। ये त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी भाई दूज तक मनाया जाता है। धर्मशास्त्री एवं नेपाल पंचांग निर्णायक विकास समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीकृष्ण अधिकारी ने बताया कि शास्त्रीय विधान है कि कौओं को यमराज का दूत माना जाता है क्योंकि यमराज कौओं के माध्यम से लोगों की खबर जानते हैं। गृह मंत्रालय ने त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुरक्षा योजना लागू कर उच्च सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार नेपाल पुलिस ने तिहार और छठ पर्व को लेकर विशेष निगरानी शुरू की है। पुलिस ने यह भी कहा है कि वीडियो सोशल नेटवर्क और सीसीटीवी के साथ साथ सादे कपड़ों में पुलिस तैनात करके सुरक्षा निगरानी कर रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। स्पेन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र सहित कई इलाकों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 65 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं वालेंशिया शहर में हालत गंभीर बने हुए हैं। स्पेन की मौसम एजेंसी ने बताया है कि वालेंशिया शहर में रेड अलर्ट लागू किया गया है। आदालूशिया शहर में दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट घोषित किया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि वो लापता लोगों और बाढ़ से हुए नुकसान से जुड़ी रिपोर्ट को देख रहे हैं। सांचेज ने लोगों से अपील की है कि प्रशासन की सलाह का पालन करें। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि गैर जरूरी यात्रा करने से बचे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद बैठक द्वारा राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के इसी कार्तिक 25 गते से 30 गते तक होने वाले अजरबैजान भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत। सरकार 10 से 14 वर्ष की बच्चियों को लक्षित कर सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एचपीवी टीकाकरण करेगी संचालित। और स्पेन में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण हुई कम से कम 65 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।